हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 12वां अध्याय श्लोक संख्या 28 एंड 29। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरेन्द्रस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मायं ददाति स्वपदान्तिकम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती युक्तमश्लोके भक्तिरभवती नैष्ठिकीम्। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। करारविन्दे नपदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्णगोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। जिह्वे पिबस्व मृतुमेतदेव गोविन्द दामो धर्माधवेति। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे। ग्रंथ राज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। 12वां अध्याय जिसका शीर्षक है सम्राट परीक्षित का जन्म। अत्यंत ही सुंदर रीति से भगवान ने महाराज परीक्षित की गर्भ में रक्षा की। उसके उपरांत जब अत्यंत ही शुभ घड़ी में महाराज परीक्षित का जन्म हुआ तो महाराज परीक्षित ने ब्राह्मणों को बहुत सारा धन धान्य और अन्न वस्त्र इत्यादि भेंट किए और ब्राह्मणों ने उस बालक का नामकरण संस्कार किया और कहा तस्मान् नाम्ना वैष्णुरात इति लोके भविष्यति न संदेहो महाभाग महाभागवतो महान। संसार में ये विष्णुरात अर्थात विष्णु के द्वारा सुरक्षित किया जाने वाला भाग्यशाली व्यक्ति कहलाएगा। और हे युधिष्ठिर महाराज आप संदेह ना कीजिए, ये निश्चित रूप से परम भागवत होगा। जब इतना सुना तो परीक्षित महाराज ने पूछा कि ये उत्तम उन्होंने कहा कि हे महात्माओं, क्या यह बालक इस महान राजवंश में प्रकट हुए अन्य राजाओं की तरह ही राजर्षि, पवित्र नाम वाला, उतना ही विख्यात और अपनी उपलब्धियों से महिमान्वित होगा? उन्होंने पूछा, अप्येष वंशयान राजर्षीन पुण्य श्लोकान महात्मना अनुवर्तिता स्वधर्शान साधुवादीन सत्त। हमारे कुल में हमारे पूर्वज तो बहुत बहुत महान है, क्या इसके अंदर ऐसे गुण होंगे? जब ब्राह्मणों ने ये सुना तब उन्होंने सोचा, अब महाराज परीक्षित को, सॉरी महाराज युधिष्ठिर को इस परम प्रतापी शिष्य के गुण बता देने चाहिए। फिर वो महाराज परीक्षित के गुणगान करने लगे कि उनके अंदर कितने गुण होंगे, कितनी क्वालिटीज होंगी, और वो बताने लगे, पार्थ प्रजाविता साक्षात इक्ष्वाकुरिव मानव ब्रह्मण सत्य सौदश्यो रामो दाशरथ। आप फिकर मत करो, ये इक्ष्वाकु जो मनु राजा के पुत्र थे उनकी प्रकार राजा का पालन करने वाला होगा, और श्री राम जो कि दशरथ के पुत्र थे उनके प्रकार वचन का पक्का और ब्राह्मणों का सम्मान करने वाला। एष दाता शरण्यश्च यथा हेशो निराशभी यशो वितनिता स्वानाम दोष्यन्ते यज्वनाम। आप ये जो बालक है वो असहाय जीवों को रक्षा करने में महाराज शिवी के समान होगा, जिन्होंने अपने शरण में आए हुए एक पक्षी के लिए अपना शरीर तक संपूर्ण शरीर का मांस काटकर उनको दे दिया था, और अपने स्वजनों का यश भराने में तो और यज्ञ करने वालों में वो कैसा होगा? दुष्यंते जो दुष्यंत पुत्र भरत है उनके समान होगा। धनुषधारियों में ये दोनों अर्जुन की तरह होगा। धन्वीनाम अग्रणी रेश तुल्यश्चार्जुन योर्द्वयो हुताश इव दुर्धर्ष समुद्र इव दुष्कृत। अग्नि के समान दुर्धर्ष होगा, कोई भी इनको कंट्रोल नहीं कर सकेगा, और समुद्र की तरह इनके बल की, इनके ज्ञान की, इनकी महानता की कोई सीमा का कोई पार नहीं पा सकेगा। ये अत्यंत ही महान व्यक्ति बनेगा, बहुत पराक्रमी होगा। मृगेंद्र इव विक्रांतो ये सिंह की तरह पराक्रमी होगा। निषेव्यो हिमवायनम और हिमालय की तरह संपूर्ण जीवों को आश्रय देने वाला होगा। तितिक्षुर वसुदेवासौ सहर्षो पितराविव और पृथ्वी के समान सहर्षणु होगा, और माता पिता की तरह सहनशील होगा। और आगे कहा, पितामहस्य साम्ये प्रसादे गिरिशोमय आश्रय सर्वभूतानां यथा देवो रमाश्रय। के पितामह ब्रह्मा जी के समान वो सबके समान समभाव रहेगा, दूसरों पर कृपा करने में वो भगवान शिव की तरह होगा, और आश्रय सर्वभूतानां यथा देवो रमाश्रय और लक्ष्मी महारानी के आश्रय भगवान विष्णु की तरह सबको आश्रय प्रदान करने वाला होगा। सर्व सद्गुण महात्मा ये एष कृष्ण अनुव्रते और सभी गुणों की महिमा में वो साक्षात कृष्ण के समान होगा। बड़ी अद्भुत बात है, ये कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त होगा और उनके अंदर वो सारे गुण होंगे जो भगवान के अंदर होंगे। रंति देव इवोदारो रंति देव की तरह उदार होगा। ययाति रिव धार्मिक ययाति महाराज की तरह ये धार्मिक होगा। और आगे बताया, धृत्या बलि समह कृष्णे प्रहलाद इव सत्क्रह बलि महाराज के समान ये धैर्यवान होगा, और प्रहलाद के समान इसकी मति सदैव भगवान कृष्ण में लगी रहेगी। आहर्तेषु अश्वमेधानां वृद्धानां पर्युपासकः ये अश्वमेध यज्ञ करने वाला होगा। अश्वमेध यज्ञ करना बहुत कठिन है, और उसमें बहुत सारी संपत्ति और बहुत सारा बल चाहिए होता है, क्योंकि सारे जितने भी राज्य होते हैं उन सबको परास्त करने के बाद ही अश्वमेध किया जा सकता है। या तो वो परास्त हो जाए या आपके राज्यों के की शरणागति स्वीकार कर लें। तो अश्वमेध यज्ञ करने वाला होगा, वृद्धों और ज्ञानियों का उपासक होगा। आगे बताया, राजऋषि नाम जनयिता शास्ता चोत्पथ गामिना, मर्यादा का उल्लंघन करने वालों को दंड देने वाला होगा और राजर्षियों को जन्म देगा अर्थात जन्मेजय इत्यादि को। निगृहीताम कलेरेशे भुवो धर्मस्य कारणात्, कलयुग को दमन करने वाला होगा, जो कि इस संसार में अधर्म करेंगे उन सब का नाश करके विश्व में शांति तथा धर्म की स्थापना करेगा। और अंत में बताया, तक्षकादा मनोमृत्यु द्विज पुत्रोपसर्जिता उपस्यत उपश्रुत्य मुक्त संग पदम हरे पदम हरे, के अंत में जब उसको पता लगेगा कि एक ब्राह्मण पुत्र के द्वारा उसको श्राप मिला है और 7 दिन के बाद तक्षक सर्प के द्वारा वो डसे जाने पर उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो उन्होंने क्या किया, समस्त भौतिक आसक्ति से अपने आप को मुक्त करके भगवान हरि के चरणों में शरण ग्रहण की, या इतनी शरण ग्रहण करेंगे क्योंकि ये भविष्यवाणी कर रहे हैं सारे ज्योतिष विद्या बताए। तो इतना सुनने के बाद महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि क्योंकि ये एकमात्र सम्राट होंगे, इतना बड़ा वैभव होगा उनका, इतना सारा ऐश्वर्य होगा, तो एक सम्राट के पास बहुत वस्तुएं होती हैं, बहुत कुछ ऐसा होता है जो उनकी आसक्ति का कारण बनता है, तो ये सब आसक्ति को समाप्त कैसे करेंगे। मतलब ऐसी सारी आसक्ति, आजकल हम देखते हैं किसी के पास छोटा सा घर होता है, थोड़ी बहुत जायदाद होती है, पुत्र पत्नी होते हैं, तो फिर उनकी आसक्ति के कारण वो भगवान में मन नहीं लगा सकते। तो ये यहाँ पर जब ब्राह्मणों ने कहा मुक्त संग पदम हरे, वो सब आसक्ति से हटकर सारी आसक्ति को समाप्त करके उससे मुक्त करके अपने आप को भगवान श्री हरि के चरणों में उन्होंने समर्पित किया, तो मानो युधिष्ठिर महाराज ने पूछा इनका मन हटा कैसे, भगवान के चरणों में लगा कैसे, वो विधि बताइए, वो तरीका बताए, किस तरह से उन्होंने अपने मन को भगवान श्री हरि के चरणों में एकाग्र करने में वो समर्थ हुए। तो आज श्लोक नंबर 28 में ब्राह्मण लोग वो बात बता रहे हैं, कह रहे हैं जिज्ञासितात्मयार्थार्थ्यो मुनिर्व्यास सुतादसौ हित्वेदं नृपगंगा यास्यत् यथा कुतो भयम् जिज्ञासितात्मयार्थार्थ्यो मुनिर्व्यास सुतादसौ हित्वेदं नृपगंगायां यास्यत् यथा कुतो भयम् जिज्ञासितात्मयार्थार्थ्यो मुनिर्व्यास सुतादसौ हित्वेदं नृपगंगायां यास्यत् यद्धा कुतो भयम्। शब्दात् जिज्ञासितात्मयार्थार्थ्यो, अर्थात संपूर्ण जिज्ञा, किसकी जिज्ञा, आत्मा मयार्थार्थ यानी आत्मा का सही सही ज्ञान, आत्मा की जिज्ञासा, तो संपूर्ण जिज्ञा जो आत्मा के ज्ञान की संपूर्ण जिज्ञासा का उन्होंने किन से की, मुनिर्व्यास सुतादसो व्यासदेव के पुत्र अर्थात सुखदेव गोस्वामी के द्वारा उन्होंने अपनी जिज्ञासा का समाधान यानी ज्ञान को प्राप्त किया। आत्मज्ञान को प्राप्त किससे किया, व्यासदेव के पुत्र सुखदेव गोस्वामी से। हित्वेदं नृपगंगायां, और इस प्रकार जब उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया, क्योंकि भौतिक ज्ञान जो है या देहात्म बुद्धि है उसी के कारण तो अज्ञानता के कारण तो जीव को आसक्ति होती है भौतिक जगत में। वास्तव में हमारे मन का सबसे बड़ा रोग ये है कि वो भौतिक वस्तुओं को अपनी आसक्ति का केंद्र बनाता है। ये होता क्यों है? देहात्म बुद्धि के कारण, क्योंकि आत्म का ज्ञान नहीं है ना, इसलिए इनको, क्योंकि वेदव्यास जी के पुत्र शुकदेव गोस्वामी के द्वारा आत्म ज्ञान प्राप्त होगा, इसलिए हित्वेदम नृपगंग, ये महाराज अपने संपूर्ण राज्य को त्याग कर, हित्व का मतलब होता है त्याग कर, गंगा के तट पर बैठेंगे और यास यास्यत यद्धा कुतो भया, और वहां पर बैठकर वो ऐसा भागवत श्रवण करेंगे जिसके कारण वो सीधा भगवत धाम चले जाएंगे। कुतो भयम, ऐसी जगह पर चले जाएंगे जहाँ पर कोई भय, वास्तव में ये भौतिक जगत भयभीत करने वाला है। हर समय जीव भय में रहता है, जब भी कोई वस्तु नहीं है तो भी भय में, कोई वस्तु प्राप्त हो जाती है तो भी भय में। तो यह बालक जो है वो आत्मज्ञान प्राप्त करेगा और यद्धा कुतो भयम्, भगवान के परम धाम, यानी जन्म के समय ही ऋषियों ने सारी बातें बता दी कि ये बालक निश्चित रूप से भगवान के धाम को प्राप्त करेगा। अनुवाद, व्यासदेव के परम दार्शनिक पुत्र के समुचित आत्मज्ञान के विषय में जिज्ञासा करने पर वह सारी भौतिक आसक्ति का परित्याग करेगा और निर्भय जीवन प्राप्त करेगा। श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर रीति से हमें समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। अब इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था कौन सा? जिज्ञासिता आत्मयार्थार्थ, आत्मज्ञान प्राप्त किया था, आत्मा का सही ज्ञान प्राप्त किया था, आत्मा के कल। वास्तव में हम जीव जो है वो आत्मा है, भगवान का अंश है, और हम कौन सा ज्ञान प्राप्त करते हैं इस भौतिक जगत में? भौतिक ज्ञान प्राप्त करते हैं, इसीलिए तो आनंद प्राप्त नहीं होता है। श्रील प्रभुपाद जी बताए भौतिक ज्ञान का अर्थ है आत्मज्ञान से अनभिज्ञता। अगर भौतिक ज्ञान प्राप्त करते हो समझो आत्मज्ञान से आप अलग हो जाते हो, आपको केवल भौतिक के विषय में बताया जाएगा, मैटर के विषय में, स्पिरिट के बारे में नहीं। तो दार्शनिक का अर्थ है सही आत्मज्ञान की खोज करना, अर्थात आत्म साक्षात्कार का ज्ञान। हमारी वास्तविक हम यहाँ संसार में आए हैं तो सारी प्रॉब्लम तब होगी जब हम आत्म साक्षात्कार का ज्ञान प्राप्त करेंगे, जो कि महाराज परीक्षित प्राप्त कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी उसके विषय में बता रहे हैं कि आत्म साक्षात्कार के बिना दर्शन मात्र शुष्क चिंतन या समय तथा शक्ति का उपव्यय है। अगर आप वास्तव में आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं करते हो, फिर भले कितना ही दार्शनिक ज्ञान, आप फिलोसफर बड़े बड़े बन जाओ, बड़ी बड़ी अपना ज्ञान का बखान करो, लेकिन यदि आत्मज्ञान नहीं, आत्म साक्षात्कार क्या है? मैं आत्मा हूँ, भगवान का अंश हूँ, भगवान की सेवा करके ही प्रसन्न होगा। यदि ये समझ में नहीं आता है तो आपके समय और शक्ति का दुरुपयोग हो रहा है, अपव्यय हो रहा है, जाया हो रही है सब। श्रीमद् भागवतम वास्तविक आत्म ज्ञान देता है और श्रीमद् भागवत सुनकर कोई भी मनुष्य भौतिक आसक्ति से मुक्त होकर निर्भयता के साम्राज्य यानी अभय पद में प्रवेश करता है। श्रील प्रभुपाद जी ने यहाँ पर अंतिम निर्णय दे दिया, क्योंकि शुकदेव गोस्वामी के द्वारा परीक्षित महाराज ने आत्मज्ञान प्राप्त किया और वह आत्मज्ञान क्या है? श्रीमद् भागवतम महापुराण। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि श्रीमद् भागवतम महापुराण सुनकर कोई भी भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाता है। आपको यदि भौतिक आसक्ति से मुक्त होना है और ये लोक जो कि परीक्षित महाराज ने प्राप्त किया है, क्या यस्यात यद्धा कुतो भयात्, अद्धा कुतो मतलब फौरन सीधे वो अकुतः भयम, वो निर्भय पद यानी भगवान के लोक को प्राप्त। यदि किसी को करना है भगवान का लोक प्राप्त करना है, भौतिक आसक्ति को समाप्ति करानी है, तो उसका एक ही तरीका है, क्या? श्रीमद् भागवतम महापुराण को श्रवण करना। श्रीमद् भागवतम महापुराण श्रवण करके कोई भी मनुष्य भौतिक आसक्ति से मुक्त होकर निर्भय, क्योंकि जब तक भौतिक आसक्ति से मुक्ति नहीं हो जाती है तब तक वो आसक्ति भगवान के अंदर केंद्रित नहीं होती है भगवान के शरणों की ओर। तो कब होगी? जब हम श्रवण करेंगे। यह भौतिक जगत भयप्रद है, इसके बंदी सदैव इस तरह भयभीत रहते कि मानो बंदी ग्रह के भीतर हो। बंदी ग्रह का कोई भी व्यक्ति बंदी ग्रह के विधि विधानों का उल्लंघन नहीं कर सकता, और यदि करता है तो उसका अर्थ है बंदी जीवन की अवधि में वृद्धि। इसी प्रकार हम इस जगत में सदा भयभीत रहते हैं। यह भयभीरुता चिंता कहलाती है। श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर बताया कि जो इस भौतिक जगत का कोई भी व्यक्ति जो है, वो सारे व्यक्ति जो है वो बंधन में है, बंदी ग्रह में है। तो इस बंदी ग्रह से यदि बाहर निकलना है तो किसी मुक्त व्यक्ति विशुद्ध सत्व में जो होगा, जो इन गुणों से आगे होगा, उसकी शरण लेना पड़ेगी। क्योंकि जो भी इस बंदी ग्रह में होता है वो सदैव भयभीत रहता है, और ये भयभीरुता क्या है? चिंता है। श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर बहुत ही सुंदर रीति से समझा रहे हैं कि भौतिक जीवन में समस्त योनियों में प्रत्येक मनुष्य या तो प्रकृति के नियमों को तोड़ने से या बिना तोड़े ही चिंताग्रस्त रहता है। मुक्ति का अर्थ है इन स्थायी चिंताओं से मुक्ति प्राप्त करना। यह तभी संभव है जब चिंता को भगवत भक्ति में प्रेरित कर दिया जाए। हर किसी को पता भी है कि हम दुखी हैं, चाहे वो बड़े से बड़ा राजा क्यों ना हो, चाहे उसके पास भौतिक समस्त सुख सामग्री हो, लेकिन उसको पता है कि मैं दुखी हूँ। अगर हम इंटरनली किसी से बारे में पूछेंगे जो भी, तो सब दुखी होंगे। हर कोई जानता है कि ये भौतिक जगत दुख दे रहा है, परंतु इससे यदि इसके दुख से, इसकी चिंताओं से यदि मुक्ति प्राप्त करनी है तो उसका एकमात्र जो तरीका है वो उसको अपनाते नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं मुक्ति का अर्थ है इन स्थायी चिंताओं से मुक्ति प्राप्त करना, और कब संभव है? जब चिंता को भगवत भक्ति में प्रणित कर दिया जाएगा। कैसे? जब हम श्रवण करेंगे, जब हम भगवान के विषय में श्रवण करेंगे तो भगवान की ओर हमारा मन आसक्त होगा। क्योंकि जिसके बारे में भी आप सुनोगे आपकी आसक्ति उसी ओर जाएगी। यदि हम, क्योंकि भौतिक जगत में रहते केवल भौतिक विषयों के विषय में ही श्रवण करते रहते, तो भौतिक वस्तु ही और भौतिक विषय ही हमें हमारी आसक्ति का कारण बनते हैं। और जब हम भगवान के विषय में श्रवण करते हैं तो भौतिक आसक्ति समाप्त हो जाती है, और वो भौतिक आसक्ति जो है, जो चिंता का कारण बनती है, वो भगवत भक्ति में प्रणित हो जाती है। श्रीमद् भागवत हमें अवसर प्रदान करती है कि हम चिंता के गुण को संसार के आध्यात्म में बदल दें। श्रीमद् भागवत महापुराण में जब हम भगवान के विषय में श्रवण करते हैं तो सारी चिंताएं समाप्त हो जाती हैं और मन में केवल भगवत चिंतन रह जाता है। और इस तरह ऐसा विद्वान दार्शनिकों की संगति से, जैसे कि श्री व्यासदेव के महान पुत्र स्वरूप सिद्ध सुखदेव गोस्वामी की संगति से संभव है। कैसे हम भागवतम महापुराण के इस महान लाभ को प्राप्त करेंगे कि हमारी भौतिक आसक्ति समाप्त हो जाएगी? जब हम किसी महान शुद्ध वैष्णव जैसे कि सुखदेव गोस्वामी के जैसे स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों से जब हम श्रवण करेंगे। क्योंकि ये श्रीमद् भागवतम जो है वो बहुत ही शुद्ध ग्रंथ है। किसके लिए है? ये निर्मत सराणाम, जिनके अंदर मत्सर नहीं है, जिनके अंदर ईर्ष्या नहीं है। और ये एज इट इज श्रीमद् भागवतम महापुराण जो है वो यदि हम श्रवण करते हैं तो हमारे हृदय से भौतिक आसक्ति स्वतः समाप्त हो जाती है। महाराज परीक्षित ने अपनी मृत्यु की चेतावनी प्राप्त करने के बाद इस अवसर का लाभ सुखदेव गोस्वामी की संगति करके उठाया और वांछित फल प्राप्त किया। जैसे ही उनको पता चला कि 7 दिन के बाद मेरी मृत्यु होने वाली है, उन्होंने फौरन से एक ऐसे शुद्ध भक्त की तलाश शुरू कर दी जो कि उन्हें भगवान के विषय में सुनाए। ताकि भौतिक आसक्ति जो है वो भगवान के प्रेम में परिवर्तित हो जाए। आज हमारे हृदय में जितनी भी भौतिक आसक्ति है उसको समाप्त करने का एक ही तरीका है, शुद्ध भक्त के द्वारा श्रवण करना चाहिए। तो ये उन्होंने क्या किया, सुखदेव गोस्वामी की संगति करके संगति का लाभ उठाया और वांछित फल प्राप्त किया। व्यावसायिक व्यक्तियों द्वारा श्रीमद् भागवतम के इस तरह वाचन तथा श्रवण का अनुकरण किया जाता है और मूर्ख श्रोता सोचते हैं कि वे भौतिक आसक्ति के चुंगल से छुटकारा प्राप्त करके अभय पद का जीवन प्राप्त कर सकेंगे। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी हमें चेतावनी दे रहे हैं कि यदि भागवतम श्रवण करना है तो किसी एक शुद्ध भक्त के द्वारा श्रवण करोगे तभी आपकी, क्योंकि जो जिसके मन में खुद ही अभी तक आसक्ति समाप्त नहीं हुई। यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी कहते व्यवसायिक व्यक्ति जो कि श्रीमद् भागवतम महापुराण का धंधा करते हैं, सिर्फ उसके द्वारा धन अर्जित करना चाहते हैं, उनके द्वारा श्रवण करके आपके हृदय से आसक्ति खत्म नहीं होगी, बल्कि क्योंकि वो लोग खुद भी भागवतम महापुराण का ये पाठ करके बहुत सारा धन अर्जित करने की अभिलाषा से करते हैं, तो फिर आपको ये भौतिक आसक्ति से कैसे छुड़ा सकते हैं। श्रीमद् भागवतम का ऐसा अनुकरणात्मक श्रवण उपहासपद होता है और मनुष्य को ऐसे लालची लोगों द्वारा भौतिक भोग के को बनाए रखने के लिए संपन्न किए जाने वाले भागवत सप्ताह के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं आप ये तो सोचो कि आप भागवतम महापुराण पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, उसका मेन उद्देश्य क्या है कि आप भौतिक भोग से की आसक्ति को छोड़कर भगवान की चरणों में आसक्ति लगाना चाहते हो। तो जिसने स्वयं ये किया नहीं है वो खुद भी अभी भौतिक भोग के चक्कर में पड़ा हुआ है, वो भागवत कथा से भी भौतिक भोग और धन कमाना चाहता है, वो मतलब आपकी आसक्ति को कैसे खत्म करेगा। तो फिर ध्यान रखो कि मनुष्य को ऐसे लालची लोगों द्वारा भौतिक भोग को बनाए रखने के लिए संपन्न किए जाने वाले भागवत सप्ताह के चक्कर में नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं आपको बोलना चाहिए भाई हाँ 7 दिन के अंदर भागवतम पूरा पूरा सुनाएंगे, आपको हम लोग 50,000 रूपये दे देंगे, आप सुना दो और फिर वो सुना के चला जाएगा और आप समझो कि हमारा कल्याण होगा। नहीं, भागवतम का एक एक शब्द समझना चाहिए, एक एक श्लोक को समझना चाहिए, प्रेम से श्रद्धा के साथ श्रवण करना चाहिए। एज इट इज जैसा श्री प्रभुपाद जी ने सुना है, तो भी एक एक शब्द को जब हम उसका रसा स्वादन करते ना तब कहीं जाकर हमारे हृदय की आसक्ति समाप्त होती है। तो ये नहीं सोचना चाहिए बस मैं क्या करता हूँ टीवी में भागवत कथा श्रवण कर लेता हूँ और बस यही काफी, नहीं, हमें सीरियस होना चाहिए, हमें सिंसियर होना चाहिए भागवतम के प्रति यदि हम वास्तविक लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। अभय अकुतः भयम्, जब हम सीधे भगवान के धाम को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें प्रामाणिक शुद्ध भक्तों के द्वारा एक एक शब्द के विषय में श्रवण कर हृदय के अंदर अभिलाषा होनी चाहिए कि किसी शुद्ध भक्त के द्वारा हमें भागवतम श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो। आगे ब्राह्मण लोग कहते हैं, इसूत गोस्वामी कह रहे हैं, इति राज्ञ उपादेश्य विप्राजातक को विधा लब्धा पचितयः सर्वे प्रतिजग्मु स्वकान् गृहान्। इति राज्ञ उपादेश्य विप्राजातक को विधा लब्धा पचितयः सर्वे प्रतिजग्मु स्वकान् गृहान्। यहाँ पर कह रहे हैं इति राज्ञ उपादेश्य, राज्ञ मतलब राजा को, इति मना इस प्रकार, इस प्रकार जब राजा को सब उपादेश्य सारा उपदेश जब उन्होंने दे दिया कि उन्होंने विप्र, विप्र कहते हैं जो विप्र मतलब जो कर्म कांड में बहुत ज्यादा निपुण होते हैं, जो बहुत एक्सपर्ट होते हैं। अभी क्योंकि इन्होंने सारा जातक को विदा, उन्होंने सारे जातक कर्म के विषय में महाराजा युधिष्ठिर को बताया था, क्योंकि ज्योतिष विद्या में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट थे, तो यहाँ पर उनको विप्र कहा जाता है। और आगे बता रहे हैं लब्धा पचितयः सर्वे, क्योंकि उन्होंने बहुत सारा उनको धन धान्य दिया था, जिन्हें पारिश्रमिक के रूप में बहुत प्रचुर राशि प्राप्त हो चुकी थी। अभी उन्होंने बताया भी था उनको सारा उनके भविष्य के विषय में, सारे ब्राह्मणों ने परीक्षित महाराज के भविष्य के विषय में एकदम हर चीज बता दी, और महाराजा युधिष्ठिर ने उनको बहुत सारा धन धान्य दिया। फिर प्रतिजग्मुः, प्रतिजग्मुः का मतलब अब वो वापिस चले गए। कहाँ गए? स्वकान ग्रहान, अपने अपने घरों में चले गए। अनुवाद, इस प्रकार जो लोग ज्योतिषी ज्ञान में तथा जन्मोत्सव संपन्न कराने में पटु थे, उन्होंने इस बालक के भविष्य के विषय में राजा युधिष्ठिर को उपदेश दिया, फिर प्रचुर भेंट प्राप्त करके वे अपने अपने घरों को लौट गए। श्री प्रभुपाद जी अत्यंत सुंदर रीति समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। अभी क्योंकि हमारे वेदों में हर प्रकार की शिक्षा है, यहाँ पर ज्योतिष विद्या के विषय में बताया जा रहा है, इसके अलावा भी धनुर्विद्या है, आयुर्वेद की विद्या है, रसायन विद्या है, वो सारी विद्याएं हमारे वेदों में लिखी हुई। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं वेद भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही प्रकार से ज्ञान के आगार है, हर प्रकार का ज्ञान है, किंतु ऐसे ज्ञान का उद्देश्य आत्म साक्षात्कार की पूर्णता है। हमें ये सोचना नहीं चाहिए बस ये ज्ञान प्राप्त करना ही उद्देश्य है। उद्देश्य क्या है जीवन का? मनुष्य जीवन क्यों प्राप्त हुआ है? आत्म साक्षात करने के लिए। तो दूसरे शब्दों में सभ्य मनुष्यों के लिए वेद सभी प्रकार से मार्गदर्शक है। भले आप आत्म साक्षात्कार करना चाहते हो तो हर प्रकार से आपका मार्गदर्शन करेंगे, आपको ज्योतिष विद्या भी बताएंगे, आपको आयुर्विद्या भी बताएंगे, आपको धनुर्विद्या, लेकिन आपको अपना गोल नहीं भूलना है, क्या? आत्म साक्षात्कार। क्योंकि मानव जीवन समस्त प्रकार के कष्टों से छुटकारा पाने का सु अवसर है, अतएव वेदों के ज्ञान द्वारा इसका समुचित ढंग से पथ प्रदर्शन होता है। अब मनुष्य जीवन में आए हैं तो प्रॉब्लम्स होती हैं बहुत सारी, जिनके कारण हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। तो ऐसे ज्योतिष विद्या जो शुद्ध ब्राह्मण विप्र होते हैं वो इस तरह की विद्या बताते हैं जिस जो कि हमारे लिए पद प्रदर्शक होती है, यानी कि हमारा मार्गदर्शन करती है कि हम किस प्रकार से भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, चाहे वह भौतिक आवश्यकताएं हो या आध्यात्मिक मोक्ष। मनुष्य का वह विशेष वर्ग जो वेदों के ज्ञान में लगा रहता था विप्र कहलाता था, अर्थात ऐसे लोग वैदिक ज्ञान के स्नातक कहलाते थे। अब श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं बहरहाल इनको विप्र कहा जाता था, जो ज्योतिष विद्या इत्यादि बताते थे, और भौतिक आवश्यकताओं आध्यात्मिक मोक्ष इत्यादि के विषय में भी बताते थे, अर्थात ऐसे लोग वैदिक ज्ञान में स्नातक कहलाते थे, यानी कि वो सबसे ज्यादा क्वालिफाइड व्यक्ति होते थे और वो बताते थे कि क्या होगा आपके भविष्य में। वेदों में ज्ञान की विभिन्न शाखाएं हैं जिनमें ज्योतिषी तथा आयुर्वेद दो महत्वपूर्ण शाखाएं हैं जो सामान्य जन के लिए आवश्यक है। हमें कभी कभी बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है क्योंकि बहुत समय हम कोशिश करते हैं नहीं कर पाते हैं, कार्य नहीं हो रहा होता, तो ज्योतिष विद्या जो है वो हमारे लिए आवश्यक पड़ जाती है। हम पूछना चाहते हैं किसी से कि क्यों नहीं हो पा रहा है, क्यों हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, या क्यों भौतिक कष्ट समाप्त नहीं हो रहा है। तो ज्योतिष विद्या और आयुर्विद्या, आयुर्वेद जो यानी कि कभी किसी का स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब होता है, तो जब तक हम जीवन इस संसार में हैं कष्ट तो होंगे, कभी कभी हमें इन विद्याओं की आवश्यकता पड़ती है। अतएव बुद्धिमान लोग जिन्हें सामान्यतः ब्राह्मण कहा जाता है वैदिक ज्ञान की विभिन्न शाखाओं में पारंगत होकर समाज का मार्गदर्शन करते थे। पहले क्या करते थे बुद्धिमान जो ब्राह्मण होते थे वो जीवों का मार्गदर्शन करते थे, जैसे इन्होंने अभी कैसे पैदा होते ही सब कुछ बता दिया कि ऐसा होंगे तो फिर ये ज्योतिषी बता देते थे, तो जो माता पिता हैं फिर उसमें जो
करना होता था, जो क्रिया करनी होती थी वो सब करते थे। यहाँ तक कि ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति धनुर्वेद में भी पारंगत होते थे, उनको धनुर्विद्या भी आती थी और विप्रगण ज्ञान के इस अनुभाग के भी शिक्षक होते थे तथा यथा द्रोणाचार्य और कृपाचार्य उनको सारी शिक्षाएं, मतलब वैदिक उनका काम और कुछ नहीं होता था, वैदिक ज्ञान प्राप्त करना और सबको देना। तो जैसे द्रोणाचार्य कृपाचार्य धनुर्विद्या में भी निपुण थे। यहाँ पर वर्णित विप्र शब्द महत्वपूर्ण है। ये जो विप्र जो यहाँ पर लिखा हुआ ना, इति राज्ञ उपादिश्य विप्र, ये विप्राजातक को, तो विप्र के विषय में श्री प्रभुपाद जी कहते हैं विप्र तथा ब्राह्मणों में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। विप्र कौन से होते हैं? विप्र कर्म कांड में दक्ष होते हैं। वे समाज का मार्गदर्शन जीवन की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति कराने में करते हैं। जैसे विप्र होते ना, जैसे कोई लोग क्या करते हैं, अगर उनके कोई भौतिक काम सफल नहीं हो रहे होते हैं, भाई मैं क्यों, मेरा जो कारोबार है बिजनेस में क्यों घाटा हो रहा है, क्यों ये मित्र इत्यादि मेरे साथ धोखा कर रहे हैं, मतलब जो भौतिक प्रॉब्लम्स होती है ना उनको सॉल्व करने में वो उनका मार्गदर्शन करते हैं। जबकि ब्राह्मण लोग आध्यात्मिक ज्ञान में पटु होते हैं। फिर ब्राह्मण लोग क्या होते हैं, वो आपको आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करते हैं और ज्ञान का यह विभाग ज्ञान कांड कहलाता है। अब वो आध्यात्मिक ज्ञान बताते हैं लेकिन क्या है, वो ज्ञान कांड है। वो क्या है, कर्म कांड है। जो विप्र लोग बताते हैं वो कर्म कांड है और जो ब्राह्मण बताते हैं वो ज्ञान कांड है। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, सब आगे बताता हूँ, इससे भी ऊपर उपासना कांड है। उपासना कांड का पर्यवसान भगवान विष्णु की भक्ति में होता है और जब ब्राह्मण सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं तो वैष्णव कहलाते हैं। तो वास्तव में यदि सारी प्रॉब्लम्स को जड़ से खत्म करना है तो उपासना कांड तक पहुंचना होगा और ये क्या है, भगवान की भक्ति। तो वास्तव में जो ब्राह्मण होते हैं वो जब सिद्ध हो जाते हैं, जब आध्यात्मिक ज्ञान में पटु हो जाते हैं, एक्सपर्ट हो जाते हैं, तब वो वैष्णव बन जाते हैं। तो सबसे ज्यादा महान क्या है, विष्णु पूजा, पूजा की सर्वोच्च विधि है, भगवान की भक्ति सबसे ज्यादा महान है और सम उन्नत ब्राह्मण वैष्णव होते हैं और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में संलग्न रहते हैं। वास्तव में जब कोई भगवान की दिव्य भक्ति में संलग्न रहता है तो सारी भौतिक प्रॉब्लम स्वतः सॉल्व हो जाती है। फिर आपको किसी ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत नहीं है, फिर आपको किसी आयुर्वेद के पास जाने की जरूरत नहीं है। भगवान की भक्ति जो है वो आपकी समस्त रोगों का को समाप्त कर देती है, भव रोग को समाप्त कर देती है और आपको कहाँ पर पहुंचा देती है, जहां पर महाराजा परीक्षित पहुंचे, अकुतः भयम, निर्भय जीवन आपको प्राप्त होता है, किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहता। यहाँ श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस प्रकार श्रीमद् भागवत जो भक्ति का विज्ञान है वैष्णवों को अत्यंत प्रिय है, जैसा कि श्रीमद् भागवतम के शुभारंभ में बताया जा चुका है कि ये जो वास्तव में वैष्णव हैं, पहले देखो विप्र होते हैं जो कर्म कांड बताते हैं, ब्राह्मण होते हैं जो ज्ञान कांड बताते हैं, उससे भी आगे वैष्णव होते हैं जो भक्ति करते हैं, जो उनको क्या पसंद है, श्रीमद् भागवतम महापुराण उनको बहुत प्यारा लगता है और यह वैदिक ज्ञान का परिपक्व फल है। और तीनों कांडों अर्थात कर्म ज्ञान तथा उपासना कांड से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। हम ये नहीं सोचते कि अभी मैं तो भागवतम पढ़ रहा हूँ, मैंने वैदिक ज्ञान तो प्राप्त किया नहीं है, मुझे ना धनुर्विद्या आती है, ना ज्योतिष विद्या आती है, ना मुझे आयुर्वेद का कोई ज्ञान है। तो जो वैष्णव होते हैं ना उनको इन सब में कोई रुचि नहीं होती है। वो जो वैदिक जो कल्पत्रु वृक्ष है ना, उसका पका हुआ फल क्या है, भागवत निगम कल्पतरुर्गलितम फलम। जितना भी ज्ञान है वो वैदिक वृक्ष के पत्ते और टहनियों के बराबर है और ये जो भागवतम है वो उसका परिपक्व फल है। और जो वैष्णव होते हैं वो क्या करते हैं, पीवत भागवतम रसमालयम मोरहो रसिका वो भी भाव, कंटिन्यूअस केवल भागवतम के रस अमृत का आस्वादन करते। उनको दूसरे पत्ते टहनियों की और आसक्ति अच्छी लगती क्योंकि उनका हृदय जो है वो
इसी भागवत को श्रवण करके तृप्त हो रहा होता है वास्तव में, क्योंकि वो जानते हैं कि हम ये देह नहीं है। बाकी सारा ज्ञान जो है, चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे वो धनुर्वेद हो, चाहे ज्योतिष विद्या हो, वो तो भौतिक ज्ञान है ना। शरीर तक ही लिमिटेड रहेगा ना, शरीर कब तक रहेगा। आखिर तो हमें भगवान तक पहुंचना है, हमारी आत्मा का कल्याण करना। तो ये जो श्रीमद् भागवतम महापुराण है वही हमें अपने वास्तविक लक्ष्य तक पहुंचाएगा। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं यह वैदिक ज्ञान का परिपक्व फल है और तीनों कांडों अर्थात कर्म कांड, ज्ञान कांड तथा उपासित कांड से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। कर्म कांड पंडितों में से जातक कर्म में पटु विप्र अच्छे ज्योतिषी होते हैं, जो नवजात शिशु के भविष्य को केवल लग्न गणना से बता देते हैं। महाराज परीक्षित के जन्म काल में ऐसे पटु जातक विप्र विद्यमान थे और उनके बाबा महाराज युधिष्ठिर ने इन विप्रों को पर्याप्त सोना, भूमि, गांव, अन्न तथा गाय समेत अन्य आवश्यक वस्तुएं प्रदान की थी। सामाजिक संरचना में ऐसे विप्र की आवश्यकता होती है और यह राज्य का कर्तव्य है कि ऐसे लोगों को सारी सुविधाएं प्रदान करें जैसा कि वैदिक पद्धति में विधान है। ऐसे पटु विप्र राज्य द्वारा पर्याप्त धन पाने पर सामान्य लोगों की निःशुल्क सेवा कर सकते हैं और इस तरह वैदिक ज्ञान का यह विभाग सबों के लिए सुलभ हो सकता है। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कर्मकांडी पंडित जो इस तरह के जातक कर्म में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट थे, इस तरह के वहां पर थे हस्तिनापुर में जब महाराज परीक्षित का जन्म हुआ था और उन्होंने महाराज युधिष्ठिर ने उनको बहुत ज्यादा पर्याप्त धन सोना इत्यादि दिए थे। और फिर जो सामान्य लोग हैं जो अभी तक भगवान की भक्ति में खुद को सरेंडर नहीं कर पाते, उनके लिए बहुत आवश्यक है कि ये सब उनको पता होना चाहिए कि उनके जीवन में क्या क्या दुख आएंगे। तो क्या होगा, उनके दुखों के कारण ही फिर वो लोग उनको बताएंगे कि भाई इसकी आप इस दुख को दूर करने के लिए ये काम करो। इस तरह से पुण्य करते करते वो आगे बढ़ेंगे और एटलीस्ट वो भक्ति तक पहुंचेंगे। भगवान कहते हैं भवनाम जन्म नावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, बहुत बहुत जन्मों की तपस्या के बाद जब वो ज्ञानी बन जाता है तब वो मेरे पास आता है। हर किसी के बस की बात नहीं कृष्ण भक्ति करना, तो फिर ऐसे व्यक्तियों को सुरक्षित रखना चाहिए। राजा का कर्तव्य है कि ऐसे व्यक्तियों को सुविधाएं प्रदान करें ताकि वो साधारण जनता का मार्गदर्शन कर सके। तो यहां तक हमने सुना कि किस प्रकार से ब्राह्मणों ने महाराज युधिष्ठिर को परीक्षित महाराज के पूरे जन्म की भविष्यवाणी बता दी। अब देखते हैं आगे क्या होता है। कृपया साथ रहिएगा, मेरे लिए प्रार्थना करना मत भूलिएगा। हरे कृष्ण।